बारह नंबर के रजिस्टर में सत्ता नहीं दी को अठारह से आज छियासी के क्लास चार क्लास चल रहा था तीसरी लाइन चल रही थी माता कुंभ होती है पिताजी माने लगाव बच्चे को पहले पहले होता है माता से क्योंकि नौ महीने माता के पेट में पलता है तो संग का रंग लगता है वो संग का रंग लगने से मन बुद्धि में स्वतः ही लागत पैदा हो जाती है तो जब तक बच्चा छोटा रहता है इंद्रियां विकास नहीं करती है मन बुद्धि बच्चा बुद्धि रहती है तब तक वो माँ की ओर ही आकर्षित रहता है जब बड़ा होता है प्राइमरी शिक्षा पूरी करता है समझदार होता है तो उसे पता चलता है कि माँ से भी ऊंची कोई हस्ती है पक्का निश्चय बैठ जाता है जिससे मुझे प्राप्ति होनी है तो बाप के प्रति लागत हो जाती है जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ लागत जरूर होती है तो यह बेहद की बात है हद में और बेहद में बाबा की वाणी के दोनों में अर्थ लगते हैं हम तो बेहद के बच्चे हैं कि हद के बच्चे हैं हम ब्राह्मण बच्चे तो बेहद के बच्चे हैं हद की बातें हमारे लिए नॉर्मल रह जाती हैं और बेहद की बातों को हमें उठाना है तो हमारे बेहद के माता पिता कौन है जो सारी शक्ति के माता पिता साबित होते बेहद माना 500 करोड़ फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए मुझे ने बोला क्या फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए फादर सिर्फ कहे और कभी मिले नहीं वो फादर कैसे हो सकता ये बात तो मुरली ने क्यों बोला ब्रह्मा के थ्रू शिव ज्योति बिंदु फादर क्या सारी शक्ति की 500 करोड़ आत्माओं से मिला प्रैक्टिकल अनुभव हुआ मिलना भी कई तरीके से होता है कोई दृष्टि मात्र से ही मिल पाते हैं कोई क्लोज कंटेक्ट में आकर के मिलते हैं इंद्रियों के संबंध के द्वारा मिलते हैं क्योंकि संबंध साकार नहीं होते कोई सिर्फ कानों से सुनकर के ही मिलते हैं आंखों से देख भी नहीं पाते जैसे दुनिया में ऐसी बहुत सी दूर दराज की आत्माएं होंगी जो कायनात के समय में बाप को आंखों से नहीं देख सकेंगी इंटीरियर एरिया अभी भी दुनिया में ऐसे हैं जहां विज्ञान के चमत्कार नहीं पहुंचे तो वो कानों से सुनेंगी जरूर किसी व्यक्ति के द्वारा ट्रांजिस्टर के द्वारा बाकी देख नहीं सकेंगी टेलीविजन में भी देखना होता है और साकार रूप में प्रैक्टिकल भी देखना होता है जैसे मुरली ने बोला एक दिन टेलीविजन भी निकलेगा चलो देखेंगे कि दादा मुरली चला रहे हैं और आम आदमी सुनेंगे तो ब्रह्मा के शरीर के थ्रू से ये कार्य नहीं संपन्न हुआ तो क्या दादा की वाणी झूठी है बाबा की वाणी झूठी नहीं हो सकती क्योंकि बाबा ने तो पहले ही इशारा दे दिया ब्रह्मा बहुतों के नाम होते हैं शिव एक का ही नाम है वो सदा काम निराकार स्टेज में स्थिर होकर के संसार के सामने प्रत्यक्ष होने वाला जो स्वरूप होगा जो बाप की प्रत्यक्षता जो बाप की बात है वो सिर्फ एक का ही नाम है जिसका यादगार शिवलिंग बनाया जाता है शिवलिंग सिर्फ ज्योति बिंदु नहीं है लिंग में लेकिन सोमनाथ मंदिर में झीला भी था, बिंदु भी यादगार, और लाल पत्थर का लिंग भी था, शरीर की यादगार, जिसमें जो ज्योति बिंदु प्रवेश करता है, लाइट के मानंद लाल पत्थर क्यों दिखाया गया? ये हमारे ब्राह्मणों की दुनिया में भी वो लाल लाइट का बोला क्यों याद किया जाता रहा? क्या कोई लाल लाइट का प्रकाश तो बोला होता है, कोई स्थूल प्रकाश होता है, वो ज्ञान के प्रकाश की बात है, वो व्यक्तित्व वो शरीर धारी ज्ञान के प्रकाश से भरा हुआ है। और फिर आधार किसका लेते हो? मंदिर में यादगार बनी हुई नारी का चोला दिखाया गया है, जिस नारी के चोले का वो आधार लेता है, जो नारी चोला है वो जलाधारी दिखाई दी। जलाधारी का मतलब ये जल का आधार लेने वाली, जन जल का आधार लेने वाली, तो जीता गंगा सावित्री जितनी भी नदियां हैं वो जन जल को धारण करने वाली कही गई है, उनका जल हमेशा बहता रहता है। पोखरे तालाब इनका जल बहता नहीं, रुक जाता है। अन्य माताएं जो वो जन की नदियां जो उस जल को धारण करती हैं, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ये गन्ना है ब्रह्मपुत्र, तो वही श्री बाबा की बननी होगी। तो कल बताया कि वास्तव में ब्रह्मा कौन और टाइटल नारी ब्रह्मा कौन, माँ बाप माँ बाप होते हैं, और माँ बाप जब चले जाते हैं तो बच्चे उनका टाइटल धारण करते हैं। तो ऐसे ही सचिव में जन्म लेने वाली राधाकृष्ण की आत्मा वो वास्तव में संस्कृति के व्यक्ति के पहले तत्व तो है, लेकिन तत्व तत्व होते ही भले पहले नंबर के तत्व हैं और बीज बीज होता है, बीज में ज्यादा शक्ति होती है। शास्त्र में कहा गया अहम बीज प्रदत्ता, बीज को बात कहा जाता है, बीज सबसे पुराना होता है, जार में तना भी होता है, डालियां भी होती हैं, पत्ते भी होते हैं, जड़ें भी होती हैं, लेकिन सबसे पुरानी चीज बीज होता है। तो सारी शक्ति का जो पिता है, जो पति को भी जन्म देने वाला है, राधा को भी जन्म देने वाला है, पहले पत्तों को जन्म देने वाला है, वो है ज्यादा पावरफुल। इस शक्ति का बीज, जिस बीज में वो सुप्रीम सोल निराकार बीज अनादि आत्मा, क्योंकि आत्मा की सभी अनादि, उन अनादि आत्माओं का भी बीज है, वो सुप्रीम सोल है, वो प्रवेश करता है। तो जिनमें पहले पहले प्रवेश करता है वो ये शक्ति व्यक्ति से मात पिता, जिनका इशारा मुरली में बारह में पहले ही दे रखा है। ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, दिल कराते थे, टीचर बनकर के बैठते थे, बच बच्चे रहने वाला ज्ञान में जाती थी, यानी कोई पुरुष भी था कोई स्त्री भी थी, मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, उनमें शिव बाबा प्रवेश करते थे, उनमें यानी ब्रह्मा से भी पहले शिव बाबा का प्रवेश किसी और में होता था। मम्मा ने तो कभी सोचा ही नहीं था, मम्मा मना ओम राधे मम्मा कर सकती, क्योंकि मम्मा तो बीच में आई थी, शुरुआत में आई भी नहीं, आग्रह तो नहीं कही उसको, क्योंकि आग वाली आत्माएं जिनके द्वारा ज्ञान का बीजन उत्पन्न हुआ टाइटलधारी ब्रह्मा ने, वह सृष्टि व्यक्ति के माता पिता हो गए। तो ये यहां बताया छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं पहले माँ को पहचानते हैं, फिर बाप को पहचानते हैं, अरे भाई बंधु आई थी उसको पहचान होती है भाई बंधु आदि की जो पहचान होती है वो बाप की बात है। तो बेहद के बाप का कहना है इस जगत में तुम्हारे जो माता पिता हैं उनसे बुद्धि का योग तोड़ दो। ये कौन कहते हैं? बेहद का बाप कहते हैं जो सारी सृष्टि का 500 करोड़ की दुनिया का बाप है वो बेहद का बाप कहते हैं। 2-4, 50, 100, 200, 1000, 2000, 15000, 1,00,000, 2,00,000 बच्चों का बाप नहीं। कौन कहते हैं? जो 500 करोड़ की सृष्टि का बाप है मनुष्य मात्र का वो बेहद का बाप कहते हैं। क्योंकि कहना तो दुख से ही होगा, बिना शरीर के कहना नहीं हो सकता। कहते हैं इस जगत में तुम्हारे जो भी माता पिता हैं उनके बुद्धि का योग तोड़ दो। ये सब है कलयुगी छूछी नाते, पतित भ्रष्टाचारी नाता कहेंगे वो सब पतित बनाने वाले हैं। इस जगत से नाता नहीं रखते। क्यों? क्योंकि ये जगत और इसके माता पिता सार बस रहने वाले, बस होने वालों से नाता रखोगे तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा? तुम भी बस मिल जाओगे। ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। इस शरीर के द्वारा तुम सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते, जीते जी सिद्धि को प्राप्त नहीं करोगे। जैसे ब्रह्मा सरस्वती और ब्रह्मा कुमार तुम्हारी शरीर छोड़ते चले जा रहे हैं, ऐसे शरीर छोड़ करके फिर अगले जन्म में प्राप्ति होगी। तो इस विनाशी दुनिया से, विनाशी संबंधों से नाता तोड़ दो। यह है तमो प्रधान जगत अर्थात दुनिया। इस पतित दुनिया से बुद्धि का योग तोड़, मुझे एक से जोड़ो और फिर नए जगत के साथ जोड़ो। नया जगत कौन सा? वो तो सतीगुण होगा, राधा कृष्ण से शुरू होगा। उनको तो हमने देखा ही नहीं। तो जिस चीज को देखा जाता है उसके साथ बुद्धि योग जल्दी जुड़ता है, या जिसे देखा ही नहीं उसके साथ बुद्धि योग जल्दी जुड़ेगा? जिसको अपने आंखों से देखते हैं वो स्वतः याद आता है। देखने के साथ साथ अगर प्रीति बुद्धि हो जाए, प्राप्ति का पता लग जाए तो स्वतः याद आता है। आंखें बड़ी धोखेबाज हैं। जो कुछ देखती हैं वो आंखों के जरिए मनोबुद्धि फिर याद जरूर करती है। बिंदु को तो खींच खींच के याद करना पड़ता है, लेकिन ये मन बुद्धि में निश्चय बैठ जाए कि वो ज्योति बिंदु इस शरीर में आया हुआ हो, चाहे ब्रह्मा का ही शरीर क्यों न हो जो शरीर छोड़ चुके हैं, तो लागत उसमें जरूर चली जाएगी। भले बाबा मुरलियों में 20 बार मना करते रहे, हमारे सामने आंखों में आंखें डाल के मना कर दें इस ब्रह्मा का फोटो नहीं रखना है, फोटो रखेंगे तो पतित तो हो जाएंगे। मुरलियों में डायरेक्ट पापा हमारे सामने बोलते रहे तो भी हमारी बुद्धि में धारणा धारणा नहीं। ये आंखें इतनी धोखेबाज हैं। कोई कहे प्रूफ? तो प्रूफ ब्राह्मणों की दुनिया में जो ब्रह्मा बाबा के फोटो हजारों लाखों की तादाद में खींचे हुए रखे हैं वो देख लो। परमात्मा की भी नहीं मानेंगे, सुप्रीम सोल की भी वाक्य को, महावाक्यों को ठुकराए देंगे। ये आंखें इतनी धोखेबाज हैं। तो अब बाप कहते हैं बच्चे मेरे एक के साथ बुद्धि योग जोड़ो, जो बेहद का बाप है वो कहते हैं, और फिर नए जगत के साथ जोड़ो। तो नया जगत कहां से आएगा? नया जगत तो हमने इन आंखों से देखा ही नहीं, वो तो सतीगुण होगा। कहां से आएगा? अरे
जब इन आंखों से कोई चीज देखेंगे तभी तो शहद याद आएगी। कोई इन आंखों से देखा ही नहीं तो शहद याद कहां से होगी?
नहीं होगी।
बुद्धि की आंख से ज्ञानी तू आत्माओं का संगठन तो देखा है, जो ज्ञान की दृष्टि से बाप को पहचानते हैं दूर बैठे। बांधेली गोपिकाएं जिनके बारे में मुरली में बाबा ने बोला है कब देखा भी नहीं है, दूर बैठे ही उनको निश्चय हो जाता है कि बाप आया है। बाबा हम आपके बन चुके, अब हम पतित नहीं बनेंगे। किटकुट के भी हम पवित्रता का पालन करेंगे, ऐसी भीषण प्रतिज्ञा धारण कर लेती है। तो उन्होंने कौन सी आंख से देखा? ज्ञान की आंख से देखा ना। तो बाप कहते हैं बच्चे इन ज्ञान की आंखों से मेरे को पहचान लो। क्या नहीं पहचाना तो अंधे की औलाद अंधे कहे जाएंगे। क्या इन आंखों से देख करके और इन इंद्रियों के द्वारा समझ करके, जो स्थूल इंद्रियां हैं वो तो दुनियावी हस्तियों को पहचाना जाता है, देखा जाता है, परमात्मा को नहीं पहचाना जा सकता, नहीं देखा जा सकता। परमात्मा तो अति सूक्ष्म से सूक्ष्म है, माना वो कोई स्थूल रूप में ऐसा पार्ट बजाने वाला नहीं है चमत्कार का। चमत्कार को सत्कार करने वाले तो दुनिया में बहुत हैं, ढेर के ढेर भगवान निकले हुए पड़े जिनको सत्कार करते हैं लोग, लेकिन वो सत्कार करने वालों में भी ज्ञान नहीं और जिसका सत्कार हो रहा है उनमें भी सत्य ज्ञान है ही नहीं, वो ही सर्वव्यापी वाला ज्ञान। जिसको भगवान समझे बैठे हैं वो भी कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, एक व्यापी नहीं है, एक में नहीं आया हुआ है। और जो सुनने वाले हैं भगवान समझने वाले हैं वो भी समझते हैं परमात्मा सर्वव्यापी, एक में नहीं आया हुआ, एक गुरु छोड़ा दूसरा किया, दूसरा छोड़ तीसरा किया। तो नए जगत के साथ संबंध कैसे जोड़ेंगे? ज्ञान की आंखों से बाप और बाप को पहचानने वाले जो बच्चे हैं उनको देख सकते हैं। इन ब्राह्मणों की दुनिया में इस समय जो बाप है, जो राजधानी स्थापन करने वाला है दुनिया में, और कोई भी पिता ऐसा नहीं है धर्म पिता ऊंचे से ऊंचा जो राजधानी स्थापन करे। धर्म तो सब स्थापन करते हैं लेकिन राजा ही कोई स्थापन नहीं कर सकता, क्योंकि राजा ही स्थापन करने के लिए चाहिए क्या? महाभारी महाभारत युद्ध, और वो युद्ध करा के विनाश कराए असुरों का, तो सब धर्म पिताओं ने अपने धर्म की तो स्थापना कर दी, पुराने धर्मों का किसी का विनाश नहीं कर पाया कि उनमें ताकत ही नहीं है दुष्टों का विनाश करना, दुष्टों का मुकाबला करना। बस विष का घड़ा भरा हुआ है उसमें एक सकोरा अपना दूध उड़ेल दिया, आखिरी वो क्या हो जाएगा? वो भी विष हो जाएगा। तो सब धर्म जो हैं वो नीचे ही जाते रहते हैं, चढ़ती कला में कोई नहीं ले जा सकता। एक परमपिता परमात्मा शिव के, जो कि सृष्टि पर साकार में आकर के पुराने धर्मों का विनाश, पुरानी मान्यताओं का विनाश, पुरानी धारणाओं का विनाश और नई धारणाओं की, नई परंपराओं की स्थापना करता है, लेकिन उसको इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। जो तीसरी आंख से देखते हैं वही उसका सान्निध्य ले पाते हैं, साकारी सुख ले पाते हैं, बाकी दूसरे उनको प्राप्त नहीं हो सकता। वो दूर के दूर रहेंगे, इस जन्म में भी दूर रहेंगे तो आगे आने वाले 84 जन्म जो हैं उनमें भी दूर रहेंगे। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला हुआ है कि ज्योतिबिंदु बाप वो तो साक्षी हो जाएंगे, और रामकृष्ण की आत्माएं तुम्हारी साथी बन जाएगी, जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा सशक्त आत्माएं, रंग मंच के हीरो हीरोइन बनने वाली आत्माएं हैं, तो वो तुम्हारी जन्म जन्मांतर की साथी बनेंगी। लेकिन किन बच्चों की साथी बनेंगी? अनेक जन्मों की, जिन्होंने उन रामकृष्ण की आत्माओं को एक ही शरीर में पार्ट बजाते हुए पहचाना है परमात्मा शिव के साथ, उस त्रिमूर्ति शिव को पहचाना है। एक शरीर में ही तीन आत्माएं प्रैक्टिकल कार्य करती है, हर आत्मा का पार्ट अपना अपना, शिव अलग शंकर अलग। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही एक है, तीनों का पार्ट अपना अपना अलग अलग, लेकिन है एक ही शरीर के द्वारा। तो तुम बच्चों को कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, झंडा कौन सा बनाना है? त्रिमूर्ति शिव का झंडा बनाओ। तो नाता जोड़ो किसके साथ? एक के साथ, और फिर नए जगत के साथ नाता जोड़ो। बाप के साथ जिनका प्रैक्टिकल संबंध है, बाप का जिनके साथ कोई संबंध नहीं, उनके साथ हम परिवार के बच्चों का भी कोई नाता नहीं, कोई संबंध नहीं। यह है बाप को फॉलो करना। हम बाप के बच्चे हैं, बाप के परिवार के बच्चे हैं, बाप के संबंध के आधार पर ब्राह्मण परिवार से संबंध चाहिए। ऐसे नहीं जिनका बाप से संबंध ही नहीं है, जिन्होंने बाप को पहचाना ही नहीं है, उनके साथ हम संबंध जोड़ते फिर, उनसे इसलिए रखते फिर। तो एक बाप के साथ संबंध जोड़ो का मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण परिवार के साथ भी संबंध तोड़ दे, नहीं, ब्राह्मण परिवार के साथ संबंध तो रखना है। कौन सा संबंध हुआ? भाई बहन का, भाई भाई का। आत्मिक रूप में तो हम भाई भाई हैं, लेकिन परिवार कब बनता है? जब साकार में माता पिता हों। तो जो ब्राह्मण होंगे ही नहीं, वो ब्राह्मणों की दुनिया के अलौकिक माता पिता को कहां से पहचानेंगे? इन आंखों से देखेंगे कहां से? देखेंगे हैं शूद्र। ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं, लिखते हैं ब्रह्मा कुमार, और बहन के ऊपर आसक्त हो जाते हैं, बहन के पीछे पीछे लगे पड़े हैं। बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमारियों के जो पीछे लगते हैं उनको कीचक कहा जाता है। क्या कीचक? किनको कहा? कीच में जो रास करते हैं, कीच माना मद, मद में रास करने की आदत लगी पड़ी है, ज्ञान में बुद्धि रमण नहीं कर सकती। ज्ञान माने जो परमात्मा ज्ञान सुनाता है, उन बातों में बुद्धि रमण नहीं कर सकती उनकी। तो ऐसे कीचक जो है ब्रह्मा कुमारियों के पीछे पड़ जाते हैं, परमात्मा की पहचान के पीछे नहीं पड़ते, परमात्मा को नहीं पहचानते। किसके पीछे पड़ते हैं? भाई बहनों के पीछे पड़ते हैं, उनके लिए भाई बहन ही सब कुछ है। परमात्मा से उनको जैसे कोई लेना देना नहीं, होगा करता होगा अपना स्वर्ग। तो ऐसी मेंटेलिटी होती है, तो वो ब्रह्मा कुमार कुमारी वास्तव में कहां हुए? बाबा ने तो मुरली में बोला है कि उन ब्राह्मणों से पूछो, मुरली में ये वाक्य बोला हुआ है, उन ब्राह्मणों से पूछो तुम्हारा ब्रह्मा कहां है। तो क्या जवाब देंगे वो ब्राह्मण? क्या जवाब देंगे? ब्रह्मा सूक्ष्म बतन में, तुम भी सूक्ष्म बतन में जाओ, यहां टाइगर लिए बैठे हो। कहते हैं वो यहां आता है, तो ब्रह्मा का रूप साकार क्या हुआ? कहेंगे गुलजार दादी। तो गुलजार दादी धोती या कुर्ता पहनो, क्योंकि ब्रह्मा को तो दुनिया में जो चित्र दिखाए गए हैं उसमें पुरुष रूप में दिखाया है। बाबा ने कहा कि मैं जिस तन में प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। तो अगर गुलजार में ही परमात्मा शिव प्रवेश करता है तो उनका नाम भी क्या होना चाहिए? ब्रह्मा होना चाहिए। कोई कहता है? कोई कहता है उनका नाम ब्रह्मा? नहीं। तो फिर ब्रह्मा कहां हुआ? جس کے بچے پریکٹیکل میں بھائی بہن بنے, اور جب وہ پریکٹیکل میں دیکھنے میں نہیں آئے گا تو بھائی بہن بنائیں گے کس کو؟ بل مخ سے کہتے رہیں گے یہ ہماری بہن ہے, جیسے بھگت لوگ مندروں میں جا کے کہتے رہتے ہیں تم ماتا پتا ہم بالک تیرے, ہاتھ جوڑے اور کہہ دیا اور گھر میں آئے, وہی وکاری دستی بٹی. تو صرف ناتا جوڑنے کی بات ہے, کون سا ناتا؟ میرا تو ایک باپ دوسرا نہ کوئی, باقی آپس میں سب بھائی بہن ہیں, دوسرا کوئی سمبندھ نہیں, اور کوئی بات نہیں, اور کوئی تکلیف نہیں ہے یہاں. کیا محنت صرف کس بات میں؟ آپس میں بھائی بہن سمجھنے کی. ایک باپ کا بچہ بننے کی محنت ہے, پوترتا کی محنت ہے, پیورٹی کی محنت ہے, ایک باپ کو یاد کرنے کی محنت ہے. شتگ میں بھی پہلے ناتا اچھا ہوتا ہے, ناتا جوڑیں گے وہ جن کو ڈائریکشن ملتے ہیں. ڈائریکشن کس سے ملتا ہے؟ ارے رنگ منچ پر ڈائریکشن دینے والا کون ہوتا ہے؟ ڈائریکٹر. تو ڈائریکٹر کو جسے ایکٹر کی آنکھ دیکھتی ہوگی, جانتی ہوگی, پہچانتی ہوگی, وہ کدھر کھڑا ہو کر کے ڈائریکشن دے رہا ہے. تو جو پہچانتا ہوگا وہی تو اس کے ڈائریکشن کو فالو کرے گا, اور پہچانتا ہی نہیں ہوگا تو ایکس وائی زیڈ کوئی ادھر ادھر سے بول پڑے گا, اشارہ دے دے گا, اسی کے ڈائریکشن کو فالو کرنے لگ پڑے گا. تو ڈائریکشن ملتے ہی ہیں ڈائریکٹ باپ کے دوارا, ڈائریکٹر کے دوارا. اس کا نام ہی ہے ڈائریکٹر. ڈائریکٹر مانا ڈائریکٹ آیا ہوا, بیچ میں کوئی تیسرا نہیں ہے. باپ اور بچے کے بیچ میں کوئی تیسرا اگر ہے تو پھر باپ کا سمبندھ ڈائریکٹ نہیں کہا جائے گا. اب ایک وانی میں تو بولا ہوا ہے کہ باپ اس سمے پھولوں کے بگیچے کو ڈائریکٹ اسنیہ دے رہے ہیں, ڈائریکٹ اسنیہ کا پانی پھولوں کو مل رہا ہے. تو وہ کون سے پھول ہیں جو ڈائریکٹ باپ سے اس سمے اسنیہ لے رہے ہیں؟ ضرور بھاگیشالی ہوں گے. گلزار کے تھرو تو اسے ڈائریکٹ کہیں گے کیا؟ ان میں تو پھر ثابتی نہیں ہوتا ہے کہ سپریم سول آتا ہے, کیونکہ گلزار تو آجنم کماری ہے, کماری کنیا تو پوتر ہوتی ہے, اور سپریم سول تو اپوتر تن میں آتا ہے, رچے پچے وکاروں والے تن میں آتا ہے, اپوتر تن میں آتا ہے, پتت تن میں آتا ہے. سب دھرم پتا ہے کس میں آتے ہیں؟ جتنے بھی دھرم پتا ہیں کس میں آتے ہیں؟ پتن میں آتے ہیں. تو ستگ میں بھی پہلے ناتا اچھا ہوتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دھیرے دھیرے نیچے اترتے جاتے ہیں. یہاں بھی کیوں لگا دیا؟ ہر یوگ میں پہلے ناتا اچھا ہوتا ہے. جو بھی آتمائیں اوپر سے اتریں گی, ستو پردھان اتریں گی, پہلے ان کا ناتا سمبندھ سکھدائی ہوتا ہے. اچھا مانا سکھدائی, اور پھر بعد میں دکھدائی ہو جاتا ہے. تو بھی کیوں لگا دیا؟ اس لیے لگا دیا کہ سنگم یوگ میں بھی شوٹنگ ہو رہی ہے. پہلے ستو پردھان اسٹیج ہوتی ہے, گیان میں آتے ہیں, باپ کو پہچانتے ہیں, تو ستو پردھان اسٹیج میں ستو پردھان ناتے ہوتے ہیں. بھاونا اچھی ہوتی ہے تو بھائی بہن سمجھتے ہیں, پھر تمو پردھان ہوتے ہیں تو بیکاری دشتی بن جاتی ہے. یہ سنیاسیوں کو مثال دیا. پہلے جب سنیاسی آتے تھے, ستو پردھان اسٹیج والے سنیاسی ہوتے تھے, تو دروازے پہ جاتے ماتا بھکشا دو, ماتا کی درشتی ہوتی تھی. اب अब कैसी दृष्टि हो गई सन्यासियों की, अब तमोवरान हो गई, अब तो शहरों में घुस पड़े, अब उनकी बुद्धि का लगाव शहरों में घुस गया। तो ऐसे ही यहां भी शूटिंग हो रही है, हर युग की शूटिंग हो रही है। सृष्टि चक्र का चित्र तो समझा ना, सतयुग की भी शूटिंग का पीरियड अपना होगा, तो त्रेतायुग की शूटिंग का भी पीरियड अपना होगा। ऐसे नहीं कि चारों युगों की शूटिंग में चारों वर्णों की शूटिंग एक साथ हो जाएगी। पहले जो परमधाम से ऊपर से नीचे सृष्टि रूपी रंगमंच पर आत्मा जागृति स्टेज में आती है, उनकी शूटिंग पहले होगी ज्ञान में आने की, पहले ज्ञान के आधार पर जागृत होंगी। तो सतयुग में आने वाली जो 2 करोड़ आत्माएं हैं, वो पहले पहले सतयुग की शूटिंग में 76 तक आकर के अपना ज्ञान का डोज परमपिता परमात्मा से लेकर के और जागृत स्टेज में नंबर बार आती है, संदेश लेती है। फिर त्रेतायुग की शूटिंग शुरू होती है। सतयुग की शूटिंग में निमित्त आत्माएं कौन बनेगी? षष्ठी चक्र में चित्त किसका दिखाया गया है? राधा कृष्ण का चित्र दिखाया गया। तो जो पहला युग है, उस पहले युग में मुखिया कौन होते हैं? राधा कृष्ण वाली आत्मा, ब्रह्मा सरस्वती वाली आत्मा। तो ब्रह्मा सरस्वती वाली आत्माओं ने लंबे समय तक साकार में रहकर के पार्ट बजाया, ब्राह्मण बच्चों की बुद्धि में उनके प्रति सबसे जास्ती रिगार्ड रहा ब्राह्मणों की दुनिया में, क्योंकि जो हीरो हीरोइन होगा उस युग का वो प्रैक्टिकल में सामने आएगा। ब्रह्मा सरस्वती वाली आत्माओं यानी राधा कृष्ण की सतयुगी वाली आत्माओं को कोई ब्राह्मण बच्चा ज्ञान में योग में धारणा में सर्विस में क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि वो हीरो हीरोइन है उस युग के। तो शूटिंग हो गई उनके थ्रू, 2 करोड़ मनुष्य आत्माओं को 76 तक संदेश मिल गया। उन श्रेष्ठ आत्माओं के मुकाबले और कोई दूसरी आत्मा ब्राह्मणों की बुद्धि में छपी नहीं, किसी दूसरी आत्मा ने छाप नहीं लगाई। लगाई हो तो बताओ, लगाई किसी भी एक दो ब्राह्मण? सच की शूटिंग में निमित्त आत्माएं कौन बनेंगी? षष्ठी चक्र में चित्र किसका दिखाया गया है? राधा कृष्ण का चित्र दिखाया गया। तो जो पहला युग है, उस पहले युग में मुखिया कौन होते हैं? राधा कृष्ण वाली आत्मा, ब्रह्मा सरस्वती वाली आत्मा। तो ब्रह्मा सरस्वती वाली आत्माओं ने लंबे समय तक साकार में रहकर के पार्ट बजाया, ब्राह्मण बच्चों की बुद्धि में उनके प्रति सबसे जास्ती रिगार्ड रहा ब्राह्मणों की दुनिया में, क्योंकि जो हीरो हीरोइन होगा उस युग का वो प्रैक्टिकल में सामने आएगा। ब्रह्मा सरस्वती वाली आत्माओं यानी राधा कृष्ण की सतयुगी वाली आत्माओं को कोई ब्राह्मण बच्चा ज्ञान में योग में धारणा में सर्विस में क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि वो हीरो हीरोइन है उस युग के। तो शूटिंग हो गई उनके थ्रू, 2 करोड़ मनुष्य आत्माओं को 76 तक संदेश मिल गया। उन श्रेष्ठ आत्माओं के मुकाबले और कोई दूसरी आत्मा ब्राह्मणों की बुद्धि में छपी नहीं, किसी दूसरी आत्मा ने छाप नहीं लगाई। लगाई हो तो बताओ, लगाई किसी भी एक दो ब्राह्मण? वो अभी तो समझने वाली आत्माएं नहीं है, वो ज्ञान में से डाउन हो जाएगी। और बाप के जो बेहद के अर्थ है उनको पकड़ने वाली आत्माएं ऊंची स्टेज पर आएंगी, पावरफुल स्टेज पर आएंगी। जैसे दुनिया में जो भी धर्म स्थापन हुए, कोई भी नया धर्म स्थापन हुआ है तो नई पावरफुल आत्माएं रही थोड़ी, लेकिन वो पुराने हुजूम से कभी नहीं दबी। क्यों? क्योंकि वो पावरफुल आत्माएं अपना कार्य करती। तो ऐसे ही जब नई दुनिया ब्राह्मणों की दुनिया में स्थापन होती है तो पावरफुल आत्माएं आकर के सीट ले लेती है। यानी यज्ञ के आदि वाले वही बच्चे जिन्होंने शरीर छोड़ दिया था ब्राह्मण बन करके, बाबा ने मुरली में बोला जो एक बार ब्राह्मण बन करके शरीर छोड़ते हैं दोबारा यज्ञ में जरूर आवेंगे, और आवेंगे तो पूर्व जन्म के संस्कार साथ में लेकर के आवेंगे ब्राह्मणत्व के। तो वही लास्ट वाली आत्मा है जो पहले थी फर्स्ट में, वो लास्ट में आकर के फास्ट पुरुषार्थ करती है और ऊंची सीट ले लेती है, उनकी सीट को कोई क्रॉस नहीं कर सकता। उनको निमित्त बनाने वाले कोई ब्रह्मा सरस्वती की आत्माएं नहीं होंगी, उनको निमित्त बनाने वाली आत्माएं वही होंगी जो यज्ञ के आदि में ब्रह्मा सरस्वती को भी गाइडेंस देती, ब्रह्मा सरस्वती को भी डायरेक्शन देती थी। दीदी दादियों दादाओं की तो बात ही छोड़ो, तो जो आदि में सो यज्ञ वो ही आत्माएं अंत में आकर के फिर निमित्त बनती हैं और तेताई की शूटिंग के निमित्त बन जाती है। क्षत्रिय धर्म बाप कहते हैं कि मैं तीन धर्मों की स्थापना करता हूं, ब्रह्मा द्वारा, ब्राह्मण सो देवता धर्म की, क्षत्रिय धर्म की, और क्षत्रिय धर्म की भी स्थापना करता हूं तो देवता धर्म की भी स्थापना करता हूं। तो ब्रह्मा के द्वारा सिर्फ ब्राह्मण धर्म स्थापन हुआ, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आपस में भाई बहन की धारणा करने वाले ब्राह्मण बच्चे पैदा हुए हैं जिनकी लिस्ट सिर्फ 16108 की है। क्या वो पवित्रता का विरुद्ध धारणा करने वाले कुल कितने हैं इतने बड़े ब्राह्मण परिवार में? सिर्फ 16108, वो भी नंबरवार। कोई 4 दिन पवित्रता का पालन करता, कोई 4 महीने, कोई 4 साल, कोई 40 साल, तो वो 16108 की जो लिस्ट है वो पूरी कब होती है? है? शतुर में पूरी होती है या त्रेता के अंत तक पूरी होती है? शतुर में तो 8 ही नारायण होते हैं जो राजा बनते हैं, बाकी तो कोई राजा बनता ही नहीं, तो बाकी राजाएं कब बनते हैं? राज परिवार की आत्माएं कब बनती हैं? त्रेता युग में। तो त्रेता युग में जो राज परिवार की आत्माएं बनती हैं 16108 प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। तो वो प्रिंस प्रिंसेस जब तक क्षत्रिय धर्म की हेड राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष होकर के त्रेतायु की शूटिंग का कार्य संपन्न न करे, क्षत्रिय धर्म की शूटिंग का कार्य संपन्न न करे, तब तक क्षत्रिय धर्म का कार्य पूरा नहीं हो सकता, त्रेतायु की शूटिंग पूरी नहीं हो सकती। तो 76 से ये नई दुनिया यानी ब्राह्मणों के संगठन में संघर्ष करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं प्रत्यक्ष होती है, वो है 108 आत्माएं रुद्रमाला के मन के डायरेक्ट शिव के बच्चे। शिव का जो रूप है वो है ही रौद्र रूप, जिसको उसका नाम पड़ता है रुद्र। यज्ञ के आदि में भी उस रुद्र ने विकराल रूप धारण किया था। तो ब्रह्मा सिंध हैदराबाद में तब तक टिके रहे, दुनिया वालों का मुकाबला करते रहे जब तक वो रुद्र सहयोगी बना रहा प्रजापिता, और जब वो प्रजापिता विरोधी हुआ तो ब्रह्मा बाबा के पैर सिंध हैदराबाद से उखड़ गए, उनको अकेले काशी भाग जाना पड़ा चुपचाप, ताकि किसी को पता भी न चले। तो ऐसी सशक्त आत्मा संघर्ष करने वाली, जिसके लिए अव्यक्त वाणी में बोला है विनाश वाला कब प्रज्वलित हुई और कौन निमित्त बने, उसका जवाब भी अव्यक्त वाणी में दिया है, ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे, तीन ग्रुप बता दिए। ब्रह्मा, ब्रह्मा जैसी आत्माएं, बाप और बाप जैसी बीज रूप आत्माएं रुद्रमाला के मन के, और ब्राह्मण बच्चे नंबर 1। क्योंकि ब्राह्मणों में नौपुरी गाई जाती है, कोई एक तरह के ब्राह्मण तो होते नहीं, कोई इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं। हम ब्राह्मणों की दुनिया में ही कोई ऐसी आत्माएं होंगी जो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट की आधार बनेंगी, कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो ब्राह्मण भी हमारी दुनिया में बैठे हुए हैं, वही आसुरी धर्म में कन्वर्ट होने वाले आसुरी यज्ञ के अंदर बैठे हुए हैं, जिन्होंने यज्ञ के आदि में माता पिता के बीच में फ्रिक्शन डलवाया, रामकृष्ण की आत्माओं के बीच में फ्रिक्शन डलवाया, आप से इनके सांप बन करके बैठे हुए तो बाहर का दुश्मन उतना खतरनाक नहीं होता है जितना अंदर का दुश्मन खतरनाक होता है। तो इसलिए अध्यक्ष वाणी में बोला, आपने ये क्लियर कर दिया ब्रह्मा के थ्रू ये महावाक्य बोल करके कि यज्ञ के अंदर भी आसुरी प्रकृति के दुश्मन घुसे बैठे। बोला घबराओ मत, क्योंकि बड़े बड़े महारथियों की एक्ट को देख करके कुछ बच्चे ब्राह्मण बच्चे घबरा रहे, घबराओ मत, बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए किसी भी व्यक्ति तन द्वारा समय तक प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे और अब भी हो रहे हैं। ये अव्यक्त वाणी का महावाक्य 74-75 की वाणी का है। 76 में तो बाप प्रैक्टिकल में 7-8 साल से कुछ ब्राह्मण बच्चों के बीच में प्रत्यक्ष हो गया, क्योंकि राजधानी का कार्य स्थापन करना है तो दिल्ली राजधानी में ही वो कार्य शुरू होगा, जिसके लिए बोला है कि बाप दादा ने स्थान परिवर्तन किया है, जैसे तुम बच्चे सेवा स्थान चेंज करते हो वैसे बाप ने भी सेवा स्थान चेंज किया है, क्योंकि पढ़ाई का कार्य शांति स्थान से होता है और लड़ाई का कार्य लड़ाई की ही भूमि में होगा। दुनिया में एक ही शहर है जहाँ सब धर्मों ने अपना राज्य किया है आक्रमण करके, जहाँ सबसे जास्ती लड़ाइयाँ हुई, जहाँ की लड़ाइयाँ महाभारी महाभारत युद्ध के रूप में गाई हुई, कुरुक्षेत्र का मैदान भी दिल्ली के पास ही दिखाते हैं। तो ऐसी संघर्षशील धरणी जरूर बाप को भी वही राजधानी स्थापन करने का कार्य करना होता है। दिल्ली परिस्थान भी बनती है तो दिल्ली कब्रस्तान भी बनती है, कब्रस्तान बनती है असुरों के द्वारा और परिस्थान बनती है देवताओं के द्वारा। देवात्माएं हैं ही रामकृष्ण की आत्माएं जो कंबाइंड होकर के अपना कार्य करती हैं एक ही शरीर के द्वारा, जिसे अर्धनारीश्वर रूप के द्वारा पूजा जाता है। तो वाणी में बोला 74-75 की अव्यक्त वाणी में कि घबराओ मत, बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए किसी व्यक्ति तन द्वारा समय पर प्रत्यक्ष हो ही जा रही और अब भी हो रहे। माना 76 तो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया, अव्यक्त बाप दादा के द्वारा घोषित किया गया, लेकिन प्रत्यक्ष तो वास्तव में 74-75 से ही होने लगा था। कौन प्रत्यक्ष होने लगा था? हैं? बाप दादा का वो साकार रूप जो असुरों से मुकाबला करता है। मुकाबला किसका किया जाता है, सामना किसका किया जाता है, असुरों का, विरोधियों का या प्रेमियों का? विरोधियों का मुकाबला करने की जरूरत पड़ती है। जो प्रेमी होंगे स्नेही होंगे वो तो कहने से ही हर बात को मान लेंगे क्या? जो जन्म जन्मांतर की प्रेमी आत्माएं होंगी उनकी ये निशानी यहां देखने में आएगी क्या? जो उनको हर बात बाबा का जो महावाक्य है रिटेन में, चाहे वो अव्यक्त वाणी का हो चाहे वो मुरली का हो, उनको सुनने मात्र से ही उसको स्वीकार कर लेंगे, उनको समझाने की भी दरकार नहीं पड़ेगी। और जो आसुरी आत्माएं होंगी उनको बार बार समझाओ कि बाबा ने ऐसे बोला है, फिर भी उनकी बुद्धि की गुत्थी सुधर नहीं सकती, क्योंकि जन्म जन्म के विरोधी रहे, अनेक जन्मों की विरोधी आत्माएं रही है जो रामकृष्ण की आत्माओं से टक्कर लेती रही है, उनको डाउन करने की चक्कर में रही। तो यहां प्रैक्टिकल वो आत्माएं नजर आई। इसलिए बाबा ने बोला था ये ब्राह्मणों का किला ऐसा शीशे का महल बन जाएगा जिसमें हर आत्मा का अपना अपना चेहरा क्लियर हो जाएगा कि आसुरी चेहरा है या देवताई चेहरा है। स्पष्ट नजर आएगा हर आत्मा को, स्वयं भी अपना चेहरा देख सकते हैं कि हम असुर हैं या जन्म जन्मांतर के देव आत्मा है। तो बोला कि जगत पुराना होता जाता है, फिर जो सुख का नाता है वो आस्ते आस्ते कम होता जाता है। क्यों क्यों कम होता जाता है? देव आत्माओं का सुख का नाता कम क्यों होता जाता है? क्योंकि जो आसुरी आत्माएं ऊपर से नीचे उतरती है, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट दूसरे दूसरे धर्म वाली, अनेक मत मतांतर फैलाने वाली, हमारी मन मत में वो श्रीमत में अपनी मन मत मिक्स करके दुनिया को गंदा कर बनाने वाली, ऐसी आत्माओं का संग का रंग हमारे ऊपर चढ़ने लग पड़ता है। और रामकृष्ण जैसी श्रेष्ठ आत्माओं का संग का रंग फीका पड़ता जाता है। इसलिए आस्ते आस्ते हम नीचे उतरते हैं। तो जगत पुराना होता जाता है, दुखदाई, पुराना माना दुखदाई, और नया माना सुखदाई। दुनिया की हर चीज नई होती है, सुखदाई होती है, पुरानी होती है दुखदाई होती है। फिर जो सुख का नाता है वो आस्ते आस्ते कम होता जाता है। अभी तो बिल्कुल ही इसे पुरानी दुनिया कहेंगे तो इसे पुरानी दुनिया से नाता तोड़ना पड़े क्या? इसे पुरानी दुनिया से नाता तोड़ना पड़े, फिर किससे जोड़ना पड़े? अरे एक बात से, और नई दुनिया बताई तो कहेंगे अभी एक बाप ही बताया, ये भी बताया कि नई दुनिया से नाता जोड़ो, नहीं बताया? अरे एक बाप के साथ नई दुनिया भी तो है, नहीं है? देखने में नहीं आती? अरे बाप होगा तो बच्चों के साथ होगा ना, बच्चे होंगे तो माता भी होगी, तो जैसे पूरा परिवार हो गया। तो प्रैक्टिकल में जो पूरा परिवार है बाप का परिवार, बाप के संबंध के आधार पर ब्राह्मणों के परिवार की दुनिया में हमें नाता जोड़ना है, विधि विधान पूर्वक जोड़ना है। ऐसे नहीं श्रीमत के वर खिलाफ छोड़ छाड़ के बात करे होना है और अपनी शूटिंग बंदी कर लो, सन्यासी बन जाओ, नहीं। जो विधि विधान है मुरलियों में उसी विधि पूर्वक हमको सफलता प्राप्त करनी। तो जगत पुराना होता जाता है, सुख का नाता आस्ते आस्ते कम होता जाता है। अभी तो बिल्कुल ही इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ना पड़े और नई दुनिया से नाता जोड़ना पड़े। भले ही ना आंखों से वो नई दुनिया देखने की चीज नहीं है, लेकिन मन बुद्धि से की आंख से हम वो नई दुनिया के भांतियों को, संबंधियों को, भाई बहनों को हम देख सकते हैं, परख सकते हैं, जान सकते हैं और उनसे नाता जोड़ सकते हैं भाई बहन का, और वो निभा भी सकते हैं। हाँ, पुरानी दुनिया से नाता तोड़ना पड़े। पुरानी दुनिया माना दुखदाई असुरों की दुनिया, उससे बुद्धि योग तोड़ो। और जो देवता बनने वाली 9 लाख आत्माएं हैं, उनमें भी 4.5 लाख आत्माएं जो राधा कृष्ण जैसी आत्माओं को जन्म देने के निमित्त बनेंगी, वो तो यहाँ आंखों के सामने हम उनको देख लेंगे, पहचान लेंगे ये पूरे 84 जन्म लेने वाले पक्के पक्के देवता धर्म की आत्माएं, जो किसी धर्म में कन्वर्ट होने वाली नहीं है। बाकी सब आत्माएं जितनी भी देव आत्माएं होती है 33 करोड़ वो सब कुछ न कुछ कन्वर्शन में चली जाती है, आसुरी धर्मों में चली जाती हैं, असुरों के पंजे में जाकर के उनसे संबंध जोड़ लेती है। باپ کہتے ہیں میرے ساتھ ناتا جوڑو. کیا ایسے نہیں کہ نئی دنیا کے ساتھ ناتا جوڑو تو نئی دنیا میں ہی رم جاؤ اور میرے کو بھول جاؤ؟ نہیں, میرے کو بھول گئے تو نئی دنیا سے ناتا آٹومیٹک ٹوٹ جائے گا. کیسے؟ نہیں, میرے کو بھولے تو میرے آدھار پر نئی دنیا کے سمبندھیوں سے ناتا ہے نا. جب میرے کو ہی بھول جائیں گے تو پہچانیں گے کیسے کہ باپ کا سمبندھ کس سے کس سے ہے, کس سے نہیں ہے؟ سریمت پر چلو اور جو بھی دیہ کے ناتے ہیں وہ سب چھوڑ دو. کیا دیہ کے ناتے الوکی تو دنیا میں بھی ہے, ایسے نہیں کہ براہمنوں کی دنیا میں نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ مکھ سے بات چیت کرتے ہیں تو مکھ دیہ کا انگ ہے نا, آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو آنکھ دیہ کا انگ ہے نا. تو دیہ کا سمبندھ جب جٹے گا تو یاد آئے گی کہ نہیں؟ سمبندھ جٹ گیا. اگر سریمت کے برخلاف سمبندھ جوڑ لیا تو اور ہی سو گنا ہزار گنا بوجھا چڑھ جاتا ہے, اور ہی کلوز کانٹیکٹ پکا ثابت ہو جاتا ہے, چاہے پورے جنموں کو کہو چاہے آگے کے جنموں کے لیے کہو. تو سب دیہ کے ناطے چھوڑ دو, وناش تو ہونا ہی ہے. چاہے باہر کی 500 کروڑ دنیا ہو اور چاہے برہمنوں کی سنگمی بھی دنیا ہو جو برہما کے دوارا پیدا ہوتی ہے, کیونکہ برہما کا جو وراٹ روپ ہے وشنو کا اس میں سب کی پیدائش دکھائی گئی. برہمن سے صرف برہمن دیوتا ہی پیدا نہیں ہوتے, چھتری بھی پیدا ہوتے ہیں, ویشی بھی پیدا ہوتے ہیں, شودر بھی پیدا ہوتے ہیں. ساری دنیا 500 کروڑ برہما کی اولاد بنتی ہے, لیکن ہے نمبر وار. تو سب سے ناتا توڑو, دیہ کے ناطے سب چھوڑ دو. کون سے ناطے جوڑو؟ ایک باپ نہیں, آتمک ناتا. 83 جنم لینے والی آتما بنتی ہیں, 16 کلا سمپورن ہے, پاور دھارن کرنے والی آتما بنتی ہیں جن کے 83 برتھ ہوں گے, بنتی ہیں؟ نہیں بنتی ہیں. تو وہ تو دیو آتما کی لسٹ میں ہی نہیں ہے. وہ بند روپ بیج روپ اسٹیج دھارن کریں گی ہی نہیں, کچھ نہ کچھ دیوان رہ جائے گا, شریر چھوڑنا پڑے گا. تو ایسی آتماؤں سے ناتا توڑ دو. سریمت پر چلو, وناش تو ہونا ہی ہے. بچے جانتے ہیں باپ جس کو پرم پتا پرماتما کہا جاتا ہے وہ بھی ڈراما انوسار سروس کرتے ہیں. کیا سروس کرتے ہیں؟ روحانی سیوا استھاپنا برہما دوارا کراتے ہیں, اور وناش شنکر دوارا اور وشنو دوارا پالنا. یہ تینوں کرتویہ باپ کے ہیں. وہ بھی ڈراما کے بندھن میں باندھا ہوا ہے. کیا کوئی کہے کہ باپ باپ ہے تو پھر ہم کو ڈاؤن کیوں کر رہا ہے؟ باپ کسی کو ڈاؤن نہیں کرتا, لیکن نمبر وار منکے تو سیٹ ہونے ہیں کہ نہیں ہونے؟ ہونے. تو جب نمبر وار منکے سیٹ ہونے ہیں, وشنو مالا بھی سیٹ ہوگی اور اس سے پہلے رودر مالا بھی سیٹ ہوگی, تو منکے نیچے اوپر کرنے پڑیں گے کہ نہیں؟ کریں گے. اب یہ کوئی باپ نے اپنی لگاؤ کے آدھار پر ان منکوں کو نیچے یا اوپر نہیں کر رہی ہے, وہ تو جس کی جیسی ایکٹ ویسے اس کی ایکٹ کے انوسار اس کی پاور کے انوسار اس کو اوپر نیچے ہونا ہی پڑے. تو باپ کوئی بورڈ پر لکھ کر کے نہیں بتائے گا کہ اس کا مالا میں یہ نمبر ہے, या लेफ्ट साइड का दाना है या राइट साइड का दाना है, हर आत्मा अपनी चलन से, अपने बोल से, अपनी एक्ट से इस शीशे के महल में स्वतः ही साबित होगी कि लेफ्ट साइड का आसुरी दाना है या राइट साइड का दैवीय दाना है, बीज रूप आत्मा है या कम जन्म लेने वाली आत्मा है। हर आत्मा को अपने अपने जन्मों का यही साक्षात्कार होना है। दूसरी आत्मा में रियलाइज करेंगी अपना पार्ट भी और संगी साथियों का भी पार्ट भी, क्योंकि ये ड्रामा है ना। जब ड्रामा है तो हर एक्टर को अपनी एक्ट का और साथियों की एक्ट का क्या पता होना चाहिए। बाबा मुरली में बोलते हैं कोई एक्टर ही क्या जो अपनी एक्ट को न जाने, तो बेवकूफ एक्टर हो गया। कोई ड्रामा रंगमंच पर पहुंचे और आवेला होकर के खड़ा हो जाए, बाप के इशारे को भी ना समझे, तो बेवकूफ एक्टर कहेंगे ना। तो यहां भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बेवकूफ एक्टर बन करके खड़े होने वाले हैं। जब धर्मराज की मार पड़ेगी तब उनको अपनी एक्ट के ऊपर पता चलेगा कि हाँ हमारी ये एक्ट, हमने ये बजाया, ये कार्य अब हमको नहीं करना है, ये करना है, ऐसे ऐसे चलना है, ऐसे हमको पार्ट बजाना है। तो पूरी स्मृति आ जाएगी अनेक जन्मों की, क्या क्या गलतियां की हैं, उन गलतियों के आधार पर हम कैसे दुखी हुए अनेक जन्मों में, वो सब पता करना है। तो बाप ड्रामा अनुसार सर्विस तो करते ही हैं। ड्रामा के बंधन में बाप भी बांधा हुआ है। बाप पर दोष नहीं लगाना चाहिए कि हमको डाउन क्यों किया। बाप किसी को डाउन और किसी को ऊपर नहीं करते, वो तो साक्षी दृष्टा है। मनुष्य तो समझते हैं वह सर्वशक्तिमान है, जैसे कृष्ण को भी सर्वशक्तिमान मानते हैं, उनको सुदर्शन चक्र दे दिया, और मेरे को भी सर्वशक्तिमान मानते हैं। बाप कहते हैं कि मैं ड्रामा के विपरीत तो कोई कर्म नहीं कर सकता। हर आत्मा में जो एक्ट नुदा पड़ा है वो अपना एक्ट करने के लिए मजबूर है, चाहे तो अभी से भी सुधर सकती है, अपने को मोल्ड कर सकती है, लेकिन जब तक बाप की पहचान नहीं हुई है तब तक दुनिया की कोई हस्ती नहीं है जो आत्मा को चेंज कर सके, मोल्ड कर सके। मनुष्य तो समझते हैं तो सर्वशक्तिवान है, मतलब कि जब सर्वशक्तिवान है तो वो हमारे कर्मों को चेंज क्यों नहीं कर देता, हमारे पार्ट को चेंज क्यों नहीं कर देता, हमको असुर से देवता बना दे। अरे तुमको असुर से देवता जब बनना होगा तो बन जाओ। तो हर आत्मा की मुट्ठी में बाप ज्ञान दे करके उसको चेंज करने का अधिकार उसकी मुट्ठी में दे देते हैं। इसलिए गीत बनाए हुए हैं, मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। किसकी तकदीर? हम बच्चों की तकदीर हमारी मुट्ठी में है, चाहे तो हम अपने भाग्य को बनाएं और चाहे तो न बनाएं। तो सुदर्शन चक्र विष्णु को, कृष्ण को दे दिया, समझते हैं इनसे गला काटते हैं। कौन? कि भगवान ने, ये तो हत्यार आया हुआ हमारा गला काटने के लिए। कहते ना, अरे हमारा गला क्यों काट रहे हो, घोंट रहे हो? कहावत है, गला घोंटने का मतलब हमको नष्ट क्यों कर रहे हो। तो समझते हैं भगवान भी नष्ट करता है किसी, गला घोंटता है, गला काटता है। नहीं, भगवान कोई गला नहीं काटता है। भगवान तो ज्ञान दे करके, ज्ञान की शक्ति जो धारण करेगा वो अपने अंदर से देह अभिमान को नष्ट करेगा। जब गला काटा जाता है ज्ञान की तलवार से तो सर अलग हो जाएगा और नीचे का देह अलग हो जाएगा। माने देह भान अलग करना, और मनोबुद्धि रूपी आत्मा को ऊपर उड़ाना, ये है गला काटने का मतलब। तो सुदर्शन चक्र से गला काटना कल्याणकारी हुआ या अकल्याणकारी हुआ? ये तो कल्याणकारी है कि तुम्हारा देह अभिमान का गला कट जाए, तुम्हारे अंदर जो देह अभिमान भरा हुआ लड़ाई लड़ने का, चाहे वाचा से लड़ो, चाहे दृष्टि से लड़ाई लड़ो, चाहे संकल्पों से लड़ाई लड़ो, और चाहे मल्ल युद्ध लड़ो, क्योंकि ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे भी हैं कि जब कोई काम कोई पावर काम नहीं आएगी, अलौकिक पावर, तो मल्ल युद्ध भी लड़ेंगे, पुलिस की धमकियां देंगे। लेकिन बाबा ने वाणी में बोल दिया है कि बाहुबल वाले विनाश को पावेंगे और योग बल वाले विजय को पावेंगे। योग बल वालों का बाल बांका भी नहीं हो सकता, हाँ अपनी गलती है तो बाल बांका भी होगा जरूर। तो समझते हैं कि भगवान ने सुदर्शन चक्र से गला काटा, परंतु ये समझते नहीं कि देवता हिंसा का काम कैसे करेंगे, चाहे कृष्ण हो चाहे विष्णु हो, वो देवताएं कभी हिंसा का कार्य नहीं कर सकते। हिंसा कौन करेगा? मनुष्य आत्मा हिंसा करेंगी सारी दुनिया की, सारी दुनिया का विनाश करने की ताकत मनुष्य आत्माओं में है, है? राम कृष्ण बुद्ध इब्राहिम क्राइस्ट जितने भी बड़े से बड़े महापुरुष हैं, शक्तिशाली आत्माएं हैं, वो भी विनाश का कार्य नहीं कर सकती। ये कार्य किसका है? ना विनाश का कार्य किसका है? सब धर्मों का विनाश, एक सब धर्म की स्थापना, तो स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा कराता हूं, लेकिन विनाश स्वयं का रूप है, वो भी कोई पकड़ में नहीं आ सकता। क्या कोई उंगली उठा के कह नहीं सकता किसने विनाश कराया, क्योंकि इनडायरेक्ट है। इसलिए कहते हैं हर हर बम बम, बम का शब्द हर के साथ क्यों जुड़ा हुआ है? हर माना पापों को हरने वाला, जब तक बम नहीं फटेंगे तब तक पाप कर्म करने वाले असुरों के पाप छीण नहीं हो सकते। इसलिए हर हर यानी पापों का हरण करने वाले शंकर के नाम के साथ बम शब्द जुटा हुआ है। बम माने बम, एटम बम, वो है स्थूल एटम बम, और ब्राह्मणों की दुनिया में है ग्लानी के एटम बम, बड़े बड़े महारथियों की ग्लानी का जितना भी भंडार है वो सारा निकल पड़ेगा बाहर, असुरी फोड़ेंगे। क्या ये यादव गवर्नमेंट, ब्राह्मणों की दुनिया में भी यादव है, यादव वो कहे जाते हैं जो न परमात्मा को मानते हैं, न सड़क को मानते हैं, और न परमात्मा के बताए रास्ते पर चलते हैं। सड़क क्या है, नरक क्या है, किसने देखा? हम जो कुछ करते हैं वही है ठीक। तो डंक की चोट श्रीमत के खिलाफ अपने जीवन को चलाए देते, तो वो यादव बड़े बड़े धनाढ्य होते हैं, बड़े बड़े शराबी होते हैं, आंखों की खूब शराब पीते हैं। हमारी शराब भी बेहद की है, एक बाप से दृष्टि लेना उसी से हम पवित्र बनेंगे, और अनेक देहधारियों से दृष्टि का संबंध जोड़ना, आंख का कनेक्शन जोड़ना, या कोई भी इंद्रिय का कनेक्शन जोड़ना, यह विष पीना। शराब क्या है? शराब भी विष होती है। तो जन्म जन्मांतर की पतित दृष्टि वाली, सड़ी हुई दृष्टि वाली आत्माएं, उनसे दृष्टि योग लिया तो शराब का नशा जरूर चढ़ेगा, और नशा जिसको चढ़ता है वो उल्टे कर्म करता है कि सीधे कर्म करता है? श्रीमत के बरखिलाफ कर्म करेगा, ये श्रीमत के अनुकूल कर्म करेगा, उसको तो नशाई सड़ी हुई शराब का पड़ा हुआ है, तो वो उल्टी वाणी बोलेगा, उल्टी ही चाल चलेगा, उल्टे ही संकल्प चलाएगा, उसकी कोई भी वाचा की, मनसा की, कर्मणा की गति प्रवाह सही नहीं चल सकता। तो मनुष्य समझते हैं कि गला काटते हैं, देवताएं गला काटते हैं, तो हिंसा का काम देवताएं नहीं करेंगे। तो यदि एक झूठा कलंक लगाया है क्या कि ये तो हमको डाउन करने की बातें बोलता है, हमारा गला काटता है, कौन बोलते हैं, कौन कहते हैं ऐसा? जो असुर होते हैं वो ही ऐसा सोचते हैं, ऐसा कहते हैं कि ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे पॉइंट बोले जाते हैं जिनसे हमारा गला कटता है, हमको डाउन करने की कोशिश की जाती है। लेकिन नहीं, देवात्माएं किसी को डाउन नहीं करती। झूठा कलंक लगाया है, कोई धनी धोरी तो है ही नहीं इस दुनिया में जो इन्हें झूठे कलंक लगाने वालों को पकड़े। अब धनी धोरी बाप आया हुआ है, इन झूठे कलंक लगाने वालों का पर्दा हटा देगा, उनका नकाब हटेगा और उनके चेहरे प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो कोई भी धनी धोरी नहीं है जो समझा दे कि देवताएं कैसे हिंसा करेंगे, है? देवताएं संपूर्ण अहिंसक का टाइटल होता है कि हिंसा करने वाले होते हैं? अरे उनके लिए तो गायन है, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये टाइटल परमपिता परमात्मा शिव का है जो सारी दुनिया का संहार कराने के लिए आया हुआ है, या देवताओं के टाइटल है? ये तो देवताओं के टाइटल है। परमात्मा अगर अहिंसक बनकर के आवे तो परमात्मा के भी नाक कान नोच के रख दे। परमात्मा का ये टाइटल नहीं है, सर्वगुण संपन्न, वो सर्वगुण संपन्न बनाएगा, बन जाएगा तो इन अवगुणों से संपन्न भरे पूरे असुरों का विनाश कौन करेगा? लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है, तो ये असुर किसके द्वारा कटेंगे? असुरों का विनाश कौन करेगा? तो दुनिया में है ऐसा? हाँ, जो शिव की शक्तियां होंगी वो उनसे टक्कर लेंगी, डायरेक्शन कितना होगा, इशारा कौन देगा, इशारों को फॉलो करने वाले कौन होंगे? अरे जिन्होंने डायरेक्टर को पहचाना होगा, डायरेक्टर से डायरेक्ट संबंध जोड़ा होगा, वो ही शक्तियां बनेंगी। इसलिए अवतवाणी में बोला हुआ है, नदी का अगर सागर से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं तो नदी नहीं वो नाला बन जाती है। क्या उसमें जाति जाति का दृष्टि वृत्ति का करप्शन बढ़ाने वाले नाले जाकर के गिरते हैं? नाला, नाला माने जिसमें गंध बहाया जाता है,